मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र, सात नयों का वर्णन। नैगम नय का वर्णन अपन पढ़ चुके थे, यानी संकल्प मात्र से जो किसी विषय को ग्रहण कर लेता है, जो कार्य संपन्न भी ना हुआ हो उसको जो ग्रहण कर लेता है वो नैगम नय कहलाता है। एवं प्रकारो लोक संव्यवहार, लोक में इसी तरह से प्रयोग होता है। भात बनाना है, आटा पीसना है, जबकि भात तो बनी हुई वस्तु को कहते हैं और आटा जो है वो पीसी हुई वस्तु को कहते हैं। गेहूं पीसना ऐसा कोई नहीं कहता, आटा पिसवाने जा रहे हैं, भात पका रहे हैं, तो ये नैगम नय का विषय है। अब देखिए संग्रह नय पर ध्यान देना। स्वजात्य विरोधेने ऐकध्यमुपानीय पर्यायानाक्रांत भेदान अविशेषेण समस्त ग्रहणात् संग्रहः। अपनी जाति का विरोध न पड़े इस तरीके से एक रूपता को प्राप्त कराकर पर्यायों को जो अनेक भेदों को प्राप्त है, उनको समान रूप से पूरा संग्रह कर लेने के कारण संग्रह नहीं कहलाता है। जैसे सत द्रव्यम, अब एक सत शब्द है वो द्रव्य का वाचक है, सत द्रव्य लक्षणम, तो उसमें सारे द्रव्य आ जाएंगे। अभी जो अपन ने केवल ज्ञान के वर्णन में पढ़े थे ना कि कैसे अनंतानंत जीव हैं और पुद्गल द्रव्य उनसे अनंतानंत है, धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य एक 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 है और काल द्रव्य असंख्यात है। लोक के जितने प्रदेश हैं उतने काल द्रव्य हैं, कालाणु, तो इन सब को वो एक सत इस शब्द में सबको ग्रहण कर लेते हैं। केवल एक अक्षर का शब्द है सत, इसमें पूरा विश्व आ गया, कुछ भी बाहर नहीं रह गया इसके। इसका नाम संग्रह है, सबको ग्रहण कर लेना, समस्त ग्रहण करना संग्रह कहलाता है। घट इत्यादि, घट कह दिया, अब घट में कितने प्रकार के घट आ जाते हैं। दुनिया में जितने प्रकार के घड़े हैं ना वो एक घट शब्द में समाविष्ट हो जाते हैं। इसी तरह जीव शब्द कह दिया तो जीव में सारे जीव आ गए, पुद्गल कह दिया तो पुद्गल में सब पुद्गल आ गए, तो ये संग्रह नहीं होता। सदित्युक्ते, सत इतना कहने पर सदिति वाग विज्ञानानुप्रवृत्ति लिंगानुमित सत्ताधार भूतानाम अविशेषेण सर्वेशान संग्रह। ये तो एक शब्द हो गया सत, लेकिन आचार्य कहते हैं कि वचन संबंधी जिसको ज्ञान है उसकी अनुप्रवृत्ति से उसके चिन्ह और उस चिन्ह से अनुमान को प्राप्त जो सत्ता के आधारभूत पदार्थ हैं, सत्य यानी सत्ता से संबंध रखने वाले विद्यमान, उनको समान रूप से पूरे के पूरे पदार्थों को ग्रहण कर लेने का नाम संग्रह है। और वो संग्रह सत संग्रह ने इस तरह से सबको ग्रहण करता है। द्रव्यम इत्युक्ते भी, और द्रव्य ऐसा कहने पर भी, द्रवति गच्छति तान स्थान पर्यायान इत्युपलक्षित, तांस्तांस पर्यायान इत्युपलक्षितानां जीवा जीव तद भेद प्रभेदानां संग्रह। अकेला एक द्रव्य कह दिया तो जो भी परिणमन करने वाले पदार्थ हैं वो सब द्रव्य हैं, तो उन उनकी पर्यायों को और इस तरह से उन उन पर्यायों से उपलक्षित जीव अजीव और उनके सारे भेद प्रभेदों को संग्रहित करने का काम संग्रहने का है। तथा घट इत्युक्ते, इस तरह घट बोलने पर घट बुद्धि अभिधानानुगम लिंगानुमित सकलार्थ संग्रह, जो अपने ज्ञान में घट शब्द का वाच्य है वो सब इसमें समा जाएगा। एवं प्रकारोन्योपि संग्रह नय, इस तरह संग्रह नय के अन्य भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो है व्यवहार नय है। संग्रह नय ने अनेक को इकट्ठा किया था, संग्रह का अर्थ इकट्ठा करना होता है ना, तो संग्रह नय ने अनेक को इकट्ठा किया था। अब व्यवहार नय क्या करता है, देखिए, अब संग्रह नयाक्षिप्तानाम अर्थानाम, संग्रह नय द्वारा इकट्ठा किए गए पदार्थों का विधि पूर्वकम अवहरणम व्यवहार, विधि पूर्वक उनमें से छटाई करना व्यवहार नाम नय का काम है। को विधि, कौन सी विधि, यह संग्रह गृहीतोर्थस तदानुपूर्वेणैव व्यवहार प्रवर्तत इत्यम विधि। संग्रह ने जिनको ग्रहण किया है उसके क्रम से ही उनकी छटाई करेगा, इसका नाम विधि है। तद यथा, उसका उदाहरण देते हैं, उसको और समझाते हैं। सर्वसंग्रहेण यत् संग्रहीतम्, सर्वसंग्रह द्वारा जो संग्रहित किया गया तच्चान अपेक्षित विशेषम, उसमें उसके भेद अपेक्षित नहीं थे, तो नालम संव्यवहाराय इति, वो बोलने के या फिर व्यवहार में लाने के योग्य नहीं होता। सत कह देने से क्या समझ में आना है किसी, तो फिर व्यवहार में लाने के लिए व्यवहार उसको उसमें से छांट छांट करके बताता है कि क्या क्या संग्रह था। तो इसलिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। यत सत तत् द्रव्यम गुणोवेति, जो सत है वो द्रव्य है, गुण भी है। द्रव्येणापि संग्रहाक्षिप्तेन, अब संग्रह नय ने जिसको द्रव्य के रूप में ग्रहण किया उसमें सारे द्रव्य आ गए थे, लेकिन जीवा जीव विशेषान अपेक्षेण न शक्य संव्यवहार इति, अगर उसके जीव और अजीव आदि भेद ना करें तो फिर अपन चर्चा नहीं कर सकते द्रव्य को लेकर के, तो काम नहीं बनता। इसलिए व्यवहार का आश्रय लिया जाता है। इति प्रत्येकम, इस तरह सभी को, एक एक को ले लो, देव नारक आदि और घट आदि, इन सब के लिए व्यवहार जरूरी है। व्यवहार के माध्यम से इनमें से छटाई होगी और फिर अपने अच्छे से उसका वर्णन और सब चर्चाएं हो सकती है। संग्रह में तो क्या होता है कि सबको इकट्ठा कर लिया, अलमारी में बहुत सारे ग्रंथ रख दिए, तो अब क्या करोगे, व्यवहार जो है उसमें से निकाल करके खोलेगा कि ये सर्वार्थ सिद्धि है, ये पद्म पुराण है, ये उत्तर पुराण है, ऐसा व्यवहार नय का ये काम है। तावत वर्तते यावत पुनर्नास्ति विभाग। अब इसमें एक खास बात बता रहे हैं कि व्यवहार ने कहां तक के गतिमान होता है, कब तक के वो विभाग करता चला जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि जब तब तक विभाग करता जाता है जब तक विभाग हो सकता है, और जब विभाग नहीं हो सकता तो व्यवहार नय रुक जाता है, फिर व्यवहार नय का काम ही नहीं है, पूरे सब भाग करके रख दिया, उसके आगे कोई विभाग ही नहीं है। जैसे पुद्गल द्रव्य तो परमाणु तक के ले गए, फिर परमाणु में जो उसके स्पर्श रस गंध वर्ण है वो सब बता दिए, फिर स्पर्श रस गंध वर्ण की जो शक्तियां हैं एक ही वर्ण में, देखिए गुलाबी वर्ण है, उस गुलाबी वर्ण में शक्तियां भिन्न होने के कारण फेड कलर आता है, फिर डार्क कलर आता है और मीडियम कलर्स आते हैं, तो ये सब उसकी शक्ति के ऊपर है। इन सब का वर्णन कर दिया व्यवहार ने, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, तो व्यवहार ने यहां तक जाता है जिसके आगे कुछ बोलने लायक बचता ही नहीं है, सब कंप्लीट कर देता वो, ये व्यवहार का काम है। क्या पता तत्वार सूत्र जितने बार पढ़ते हैं ना उतने बार ऐसा लगता है कि एकदम नया कुछ सीख रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है। अब इसके बाद देखिए, लिंग संख्या साधनादि व्यभिचार निवृत्ति पर शब्द नय। अब कहते हैं कि शब्द नय जो होता है ना वो बिल्कुल व्याकरण के जो कड़क नियम है उनमें ही चलता है, वो किसी तरह का दोष स्वीकार नहीं करता। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग इनको मिक्स नहीं करता वो शब्द ने, संख्याओं को मिक्स नहीं करता, जैसे बहुवचन को एक वचन में नहीं बोलता, एक वचन को बहुवचन में नहीं बोलता। साधन यानी कारक होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, इन सात कारकों को वो कभी भी, इनका मतलब जो इनके नियम है उन्हीं नियमों को वो पकड़ के चलता है। जैसे जहां पर मे अर्थ होगा वाक्य में तो वहां पर वो सप्तमी ही डालेगा और कुछ नहीं, तो वो कड़क व्याकरण से जुड़ा हुआ नहीं होता है शब्द ने। शब्द शास्त्र व्याकरण को भी कहते हैं ना, व्याकरण को शब्द शास्त्र भी कहते हैं, लक्षण शास्त्र भी कहते हैं व्याकरण को। प्रमाण मकलंकस्य पूज्य पादस्य लक्षणम द्विसंधान कवे ही काव्यम रत्नत्रयम अपिश्चिमम। बोले कि अकलंक देव का प्रमाण अपश्चिम है यानी अद्वितीय है, और पूज्य पादस्य लक्षणम, पूज्यपाद स्वामी का व्याकरण अद्वितीय है, लक्षण का अर्थ वहां व्याकरण है, परिभाषा नहीं है, लक्षण का अर्थ व्याकरण है। अब जैसे कभी कभी आचार्यों की टीकाओं में अपन पढ़ते हैं कि प्राकृत लक्षण बलात् पुल्लिंगम, प्राकृत व्याकरण के कारण ये पुल्लिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्षण का अर्थ व्याकरण है, प्राकृत लक्षण बलात् तो वहां लक्षण शब्द का अर्थ व्याकरण है। तो अब देखिए उदाहरण दे रहे हो, तत्र लिंग व्यभिचार। अब देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग इनमें कैसे दोष लगता है, उदाहरण दे रहे हैं, पुष्य तारका नक्षत्रमिति, पुष्य पुल्लिंग है, तारका स्त्रीलिंग है, नक्षत्रमिति नक्षत्र जो है नपुंसकलिंग है, तो बोलने में तो ये आता है कि पुष्य उन ताराओं का समूह है जो एक नक्षत्र है, पुष्य एक नक्षत्र है और नक्षत्र ताराओं के समूह को कहते हैं। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग का जो ये मिश्रण किया है इसको शब्द ने स्वीकार नहीं करता, और व्यवहार जो चलता है वो अकेले शब्द ने ऐसे नहीं चलता, क्योंकि इतना कड़क व्याकरण लेकर चलेंगे तो फिर बोलना मुश्किल हो जाएगा, सामने वाले ही समझेंगे नहीं, तो ये सब ऐसे व्यवहार। और देखिए संख्या व्यभिचार, संख्या का जो दोष है वो कैसा है जलमापो वर्षा, जलम नपुंसकलिंग है, आपह ये बहुवचन, ये संख्या विचार में अभी लिंग की बात नहीं चल रही, संख्या की बात चल रही, जलम जलम एक एक वचन है, सिंगल है जलम, और आपो आपह जो होता है नित्य बहुवचनांत होता है ना, तो आप या आप भी जल का वाचक है, लेकिन वो बहुवचन में वर्षा ऋतु जलम आपह, जल जो है वो पानी है, और वर्षा ऋतु, वर्षा बहुवचन और ऋतु एक वचन है। फिर आम्रा वनम, आम्र के बहुत सारे पेड़ हैं उनको वन कहते हैं, आम्र वन, तो ये आम्र बहुवचन है और फिर वन एक वचन है। वर्णा नगरम, मकान जो है वो नगर है, तो ढेर सारे मकान है तो नगर है, इति इस तरह। फिर साधन व्यविचार, कारक व्यविचार, साधन व्यविचार का मतलब जो कारक है उनमें अपन दूषित प्रयोग करें। सेना पर्वतम अधिवसति, सेना जो है वो पर्वत पर ठहरी हुई है, तो पर्वत पर ठहरी हुई तो पर्वते वसति ऐसा बोलना था, लेकिन पर्वतम अधिवसति, अधि लगाने पर उसमें पर्वतम हो गई विभक्ति द्वितीय, तो ये दोष शब्द न्याय को स्वीकार नहीं है। पुरुष व्यभिचार, पुरुष व्यभिचार का मतलब क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें मिश्रण कर देना, तो वो बोलचाल में तो चलता है, ए ही मन्य रथेन यास्य से, आ जाओ मैं समझ रहा हूं तुम रथ से जाओगे, नहीं यास्य से नहीं जाओगे, यातस्ते पिता इति, तुम्हारे पिता तो जा चुके हैं। तो इसमें क्या है कि एक ही वाक्य में सब प्रकार के पुरुषों का प्रयोग किया जा चुका है, यही मध्यम पुरुष है, मन्य उत्तम पुरुष है, रथेन यास्यसी ये मध्यम पुरुष है, नहीं यास्यसी ये फिर मध्यम पुरुष है, यातस्ते पिता इति, यहां पर तो ठीक है यात तो अतीतकालीन क्रिया है। काल व्यभिचार, अब काल संबंधी दोष क्या होता है, विश्व दृश्वास्य पुत्रो जनिता, अब देखिए विश्व दृश्वा, विश्वम दृष्टवान इति विश्व दृश्वा, देख चुके हैं, देखा जा चुका है विश्व जिनके द्वारा, अथवा जिन्होंने विश्व को देख लिया है उनको विश्व दृश्वा कहते हैं, देख लिया है, भूतकाल हो गया। और अस्य पुत्रो जनिता, इनका पुत्र जनिता यानी होगा, ये लुट लकार है, भविष्य में होगा। तो अब सोचो कि अभी पुत्र ही नहीं हुआ है, भविष्य में होने वाला है, और उसने विश्व को देख लिया है, पर ऐसे वाक्य का प्रयोग चलता है लोक में, क्योंकि जिस पुत्र को विश्व दृश्वा बनना है उसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि कि इनका पुत्र विश्व दृश्वा होगा, ऐसा कहने में आता है। जैसे इनका पुत्र तीर्थंकर होगा, इनका पुत्र सिद्ध होगा, ये कहने में आता है। सिद्ध उसको कहते हैं जो मुक्त हो चुके हैं, पर वो भूतकाल का प्रयोग है, सिद्ध शिधु संराधो एक धातु है, उसमें क्ता प्रत्यय लगा है तो सिद्ध शब्द बनता है। सिद्ध का अर्थ होता है जो सीज चुके हैं। अब सिद्ध जो सीज चुके हैं वो होंगे कैसे, होंगे तो फ्यूचर टेंस है ना, भविष्यत क्रिया है, तो सिद्ध जो है वो भूत की क्रिया है, पर ये इतना चलन में है कि अपन अभिप्राय समझ जाते हैं कि वो सिद्ध होंगे। अब सिद्ध होंगे मतलब जब भी होंगे तो सिद्ध हो चुके हैं उस पर्याय में होंगे। यहां विश्व दृष्टवा के उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने। फिर उपग्रह व्यभिचार, भावी कृत्यम आसीदिति, होने वाला काम था वो हो गया था, तो अब देखिए होने वाला, होने वाला का मतलब फ्यूचर है, लेकिन हो चुका था ये पास्ट हो गया। तो ऐसे प्रयोग होते हैं लोक में। अब उपग्रह व्यभिचार, उपग्रह का मतलब होता है किसी धातु में आप उपसर्ग लगा दें तो फिर उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसके प्रयोग जो है बदल जाते हैं। उसमें जो प्रत्यय वगैरह जो होते हैं, जैसे आत्मनेपदी का प्रत्यय है वो परस्मैपदी का बन जाता है, परस्मैपदी का प्रत्यय है वो आत्मनेपदी का बन जाता है। जैसे संतिष्ठते, ये आत्मनेपदी बन गया, सम उपसर्ग लग गया, और मूल में क्या था, स्था धातु थी, स्था में तिष्ठ का आदेश हुआ था, और तिष्ठ का आदेश करने पर कैसे रूप चलते थे, तिष्ठति परस्मैपदी के रूप चलते थे, लेकिन सम उपसर्ग लगा दिया तो संतिष्ठते आत्मनेपदी का रूप हो गया। इसी तरह और आगे देखिए, प्रतिष्ठते, प्र लगा दिया तो प्रतिष्ठते बन गया, तिष्ठति नहीं रहा वो, तिष्ठते बन गया, प्रतिष्ठते। विरमति, जबकि रम धातु है, रम धातु को अगर चलाते हैं अपन तो परस्मैपदी में जो रमति, रमते, रमेते, रमन्ते, ऐसे रूप चलते हैं, लेकिन यहां पर वी लगा दिया तो विरमति, उपरमति, उप लगा दिया तो उपरमति हो गया, जबकि मूल में रमते था। एवं प्रकारम व्यवहार नयम न्याय्यम मन्यते, इस तरह का जो प्रयोग होता है उसको व्यवहार नय जो व्यवहार नयम न्याय्यम मन्यते, इसका इस प्रकार के व्यवहार नय को उचित माना जाता है। अन्यार्थ स्यान्यार्थेन संबंधाभावात, क्योंकि अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ के साथ संबंध नहीं हुआ करता। लोक समय विरोध इति चेत, शंका, अच्छा रमुक क्रीडायाम, नीचे टिप्पणी में उसको और समझाया है, नयों का जो ये प्रकरण आता है ना, ये चूंकि बहुत ज्यादा परिचय में नहीं रहता सब जनता के, तो फिर इसको सुनते समय एकदम मन एकदम खुल करके प्रवृत्ति नहीं कर पाता, तो भी इसको अपन श्रद्धा से सावधानी से सुनते जाएं, बार बार इसका अभ्यास करें तो ये विषय समझ में आने लगता है। तो फिर कोई प्रश्न करता है कि ये जो आप जो नए समझा रहे हैं तो इसमें तो लोक और शास्त्र सबसे विरोध आ जाता है, या फिर धर्म से विरोध आता है, आप जो जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि विरुद्धता, आने दो, तत्व में हम ही मानसित है, क्योंकि यहां पर तत्वों को समझने की अपेक्षा ये सब विस्तार हम समझा रहे हैं। न भैषज्य मातुरे इच्छानुवर्ती, जो औषध होती है वो बीमार व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं दी जाती, वो रोग के अनुसार दी जाती है। इसलिए यहां पर तत्व समझाया जा रहा है तो फिर तुम्हें वो चीज अटपटी लग रही है तो लगने दो, पर यहां जिस तरीके से तत्व को समझाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से हम तत्व को प्रस्तुत करेंगे। नानार्थ समविरोहणात् समविरूढः, यथो नानार्थान समतीत्य एकम अर्थम आभिमुख्येन रूढः समविरूढः। एक शब्द अनेकों को विषय करने वाला हो सकता है, लेकिन समय भी रूढ़ है, उस शब्द का वही अर्थ ग्रहण करेगा जो लोक में रूढ़ है, सब लोगों ने जो अर्थ मान्य कर रखा है उसी को ग्रहण करेगा। जैसे घृणा शब्द है, घृणा शब्द के दो अर्थ होते हैं लेकिन दूसरा अर्थ किसी को मालूम ही नहीं है। एक ही अर्थ सबको मालूम है, क्या अर्थ है घृणा का? नफरत, द्वेष। लेकिन दूसरा अर्थ दया भी होता है। अगर कोई किसी से बोले कि मैं तुम पर घृणा करता हूं तो फिर वो बुरा मान जाएगा। तो समभिरूढ़ जो नए होता है ना, वो उसी अर्थ में शब्द को पकड़ता है जो अर्थ प्रचलन में है, उसके विभिन्न अर्थों को छोड़ देता है, वो सिर्फ उसी अर्थ को लेता है जो प्रचलन में। गौर इत्यम शब्दों वागादिशु अर्थेशु वर्तमान पशौ अभिरूढ़। गौ, ये जो शब्द है, गौ शब्द जो है सरस्वती का वाचक भी है। षोडशम गौर निगद्यते, ये सुने पंक्ति आपने, सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान् निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। ये सरस्वती नाम स्तोत्र है। इसके 16वां नाम क्या है सरस्वती का, अंतिम नाम? षोडशं गौर निगद्यते, गौ नाम है सरस्वती माता का। लेकिन गौ अगर कोई बोले सरस्वती को तो फिर बोलेंगे तुम क्या क्या बोल रहे हो, तुम होश में हो या नहीं हो? बोले गौ का अर्थ तो वो होता है एक जानवर होता है, तुम सरस्वती माता को जानवर के नाम से बुला रहे हो, ऐसा हो जाता है। तो समभिरूढ़ जो नया होता है वो उसी को पकड़ता है जो रूढ़ है। अथवा अर्थगत्यर्थ शब्द प्रयोग, शब्दों का जो प्रयोग होता है वो अर्थ को जानने के उद्देश्य से किया जाता है। तत्र एकस्यार्थस्यैकेन गतार्थत्वात्, अब एक अर्थ का एक शब्द के द्वारा गतार्थ हो जाने के कारण पर्याय शब्द प्रयोगो नर्थक, फिर उसके जो अन्य पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग है वो निरर्थक हो जाता है। शब्द भेदश्चेदस्ति अर्थ भेदेनाप्यवश्यम भवितव्यम, अगर शब्द अलग है तो फिर ये निश्चित समझना कि अर्थ भी उसका कुछ अलग होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही वस्तु के दो नाम हों और उन नामों के अर्थ एक हो। वस्तु भले एक हो लेकिन उन नामों के अर्थ अलग ही होंगे। नानार्थ समविरोहणात् समविरूढः, नाना पदार्थों पर समविरूढ़ होने के कारण समविरूढ़ ने समविरूढ़ कहलाता है। इंद्रनाद इंद्रः, इंधन क्रिया के कारण इंद्र को इंद्र कहते हैं। इंधन का अर्थ होता है क्रीड़ा। फिर शकनात् चक्रः, और इंद्र को ही चक्र भी कहते हैं। तो शक्र क्यों कहते हैं? तो सक्को जम्बू द्वीपम पलट दी, वो जम्बू द्वीप को ऐसे पलटने में पलटने की शक्ति रखता है, इसलिए उसको शक्र कहते हैं। पूरे जम्बू द्वीप को सौधर्म इंद्र ऐसे पलट सकता है, इसलिए उसका नाम शक्र है। पर अब अपन जम्बू द्वीप में ही है, घबराना नहीं, इंद्र ऐसा करता नहीं कभी। ये एक संभावना सत्य जो होता है ना, उसमें बताया जाता है कि ये शक्ति उसके पास है और करने का कोई कारण भी नहीं है, इतना गुस्सा कैसे आएगा उसको, पूरा जम्बूद्वीप पलट दे। उसमें तीर्थंकर भी हैं, चार तीर्थंकर होते हैं हमेशा जम्बूद्वीप में, आठ धात की खंड में होते हैं और आठ पुष्करार्ध में होते हैं, ऐसे 20 तीर्थंकर हमेशा होते हैं। फिर बोले पूर्धारणात् पुरंदर, नगर का विभाग करने के कारण वो पुरंदर भी कहलाता है। इंद्र का एक नाम पुरंदर भी है। अब नगर का विभाग यानी जो तीर्थंकर जिस नगरी में जन्म लेते हैं उसको पूरे व्यवस्थित करवाते हैं इंद्र, पूरे 12 योजन और लंबाई और 9 योजन चौड़ाई तक व्यवस्थित कर देते हैं। पूर्धारणात् पुरंदर कहलाते हैं इंद्र। तो एक एक शब्द इंद्र के ही वाचक होकर भी भिन्न अर्थ को सूचित करने वाले हैं। कोई भी दो शब्द एकार्थक नहीं होते, भले उनके अर्थ में जो वस्तु आ रही है वो एक हो, लेकिन जो शब्द भेद है वो किसी कारण से ही है। बिना कारण के शब्द भेद नहीं होते। अथवा यो यत्राभिरूढ़ स तत्र समेत्याभिमुखीनारोहणात् समविरूढ़। अथवा जो जहां पर अविरूढ़ है, चलन में है, वह वहां पर आकर के अभिमुख रूप से आरूढ़ हो जाता है, बाकी सब अर्थ वहां पर गौण हो जाते हैं, सिर्फ वो एक ही अर्थ प्रधान हो जाता है। यथा जैसे को भवानास्ते, आप कहाँ रहते हैं, तो उत्तर क्या देते हैं, आत्मनीति, अपने में रहते हैं। कुतः कैसे, वस्तंतरे वित्त भावात, मैं अन्य कहीं कैसे रह सकता हूं। फिर यद्यन्यस्यान्यत्र वृत्ति, यदि अन्य वस्तु की किसी अन्य वस्तु में परिणति हो जाए स्यात, तो ज्ञानादीनाम रूपादीनाम चाकाशे वृत्ति स्यात, ज्ञान आकाश में चला जाएगा और रूप भी चला जाएगा आकाश में, जबकि ऐसा संभव नहीं है। आकाश अरूपी है और आकाश अचेतन है, तो अचेतन में ज्ञान नहीं जा सकता, अरूपी में रूप नहीं जा सकता। इस तरह ये समभिरूढ़ का वर्ण पूर्णतः येन आत्मना भूतस् तेनैवाद्यवस्यति तेनैवाद्यवसायति इति एवं भूतः। जो जिस रूप से परिणत हो चुका है उसको उसी रूप से ज्ञापित करता है, अर्थात उसकी जानकारी उसी प्रकार से देता है, तो वो एवं भूत होता है। स्वाभिधेय क्रिया परिणत क्षण एव स शब्दो युक्तो नान्यतिति। एवं भूत नय का ये रहता है कि जब पुजारी पूजा कर रहा है तभी वो पुजारी है, वो भोजन करते समय पुजारी नहीं है। यानी जो जिस क्रिया रूप से परिणत है उसको वैसा मानेंगे, अगर वो उस रूप परिणति नहीं कर रहा है तो वो भले उस काम में नियुक्त हो तो भी उसको वो पुजारी नहीं कह सकता। योद्धा को योद्धा कब कहेगा एवं भूत ने, जब वो युद्ध में तत्पर होगा, अन्यथा नहीं कहेगा। और अपने वेशभूषा में होगा युद्ध की, उसके बिना नहीं कह सकता। यदैव इंद्रति तदैव इंद्रो, जब इंद्र क्रीड़ा कर रहा है तब वो इंद्र कहलाएगा। नाभिषेचक हो, अब वो अभिषेक कर रहा है तो फिर इंद्र नहीं कहेंगे उसको। देखिए कितने मजेदार बात है, अभिषेक करने वाले को अभिषेक शेचक कहेंगे, इंद्र नहीं कहेंगे। इंद्र का अर्थ क्रीड़ा करने वाला होता है। ये एवं भूत नहीं की बात है, लेकिन व्यवहार ने में ये सब जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। एवं भूत नहीं की बात है, न पूजक, और फिर जब वो पूजा करता है इंद्र तब भी उसको इंद्र नहीं कहेंगे, तब वो पूजक कहलाएगा। यदैव गच्छति तदैव गौर न स्थितो न शयितैति, गाय अगर बैठी हुई है या सो रही है तो उसको गौ नहीं कहेंगे, जब वो चल रही है तभी गौ कहेंगे। गच्छति इति गौः, ये उसकी व्युत्पत्ति है, तो उस क्रिया से जब संबंध होगा तभी उसको एवं भूत स्वीकार करेगा। अथवा येन आत्मना येन ज्ञानेन भूतः परिणतस् तेनैवाद्यवसाययति, जिस रूप से जिस ज्ञान द्वारा वह हो चुका है परिणत है, उसी अपेक्षा से उसका ज्ञान कराता है। यथा जैसे इंद्राग्नि ज्ञान परिणतम आत्मैव इंद्रो निश्चेति, इंद्र अथवा अग्नि के ज्ञान से परिणत जो आत्मा है उसको इंद्र या अग्नि कहा जा सकता है। जैसे अपने ज्ञान में अग्नि आ रही है तो फिर अग्नि कहा जा सकता है अपने को, ये भी एवं भूत न करता है, ये काम भी कर लेता है। उक्ता नैगमादयो न्याः उत्तर उत्तर सूक्ष्म विषयत्वादिशां क्रम पूर्व पूर्व हेतु कत्वाच्च। नैगम आदिक सात नयों का वर्णन पूरा हुआ। ये नैगम ने बहुत विशाल है, संग्रह ने उससे थोड़ा सूक्ष्म है, फिर क्रमश ये सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं और एक दूसरे के कारण बनते चले जाते हैं। एमेति नया पूर्व पूर्व विरुद्ध महाविषया उत्तर उत्तर अनुकूल अल्प विषया। पहले पहले के विरुद्ध महाविषय वाले होते हैं और उत्तर उत्तर अनुकूल अल्प विषय वाले होते हैं। द्रव्यस्य अनंत शक्ते ही अनंत शक्तिमान जो द्रव्य है उसके प्रतिशक्ति विद्यमाना बहु विकल्पा जायन्ते। एक एक शक्ति में विद्यमान बहुत सारे भेद बन जाते हैं, उनको उनको ग्रहण करने वाले उतने नए बन जाते हैं। तो एते गुण प्रधानतया परस्पर तंत्रा, पर वे नए एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि गुणों की प्रधानता की अपेक्षा उनमें जुड़ी रहती है। सम्यक दर्शन हेतव, और जब जब ये नए एक दूसरे के साथ मैत्री बनाकर चलते हैं, यानी एक दूसरे की कीमत करते हैं, जब ये नए, तब सम्यक दर्शन हेतव, सम्यक दर्शन के कारण होते हैं। पुरुषार्थ क्रिया साधन सामर्थ्यात तंत्वादय इव यथोपायम विनिवेश्य मानाः पटादि संज्ञाः स्वतंत्राश्चा समर्थः। जब धागे जो होते हैं ना, वो धागे ऐसे सीधे और आड़े व्यवस्थित होते हैं तभी कपड़ा बनता है। उसी प्रकार ये नए जो हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, शब्द नए और अर्थ नए, ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तब सम्यक दर्शन पैदा होता है। क्या उदाहरण दिया, क्या इतने इतनी पंक्तियों को पढ़ करके अपन अनुमान लगा सकते हैं कि पूज्यपाद स्वामी के पास समझाने की कैसी क्षमता है, जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी है। और पूज्यपाद स्वामी यहां कर्नाटक के कोले ग्राम में उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण माधव भट्ट और माता श्री देवी इनके पुत्र थे। तो आचार्यों की भूमि तो ये कर्नाटक रही है, तीर्थंकरों की भूमि उत्तर भारत रही है। आप देखिए सबसे ज्यादा जन्म लेने वाले तीर्थंकर कौन से क्षेत्र में जन्मे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप देखो कितनी जन्मभूमि है, काकंदीपुर है, फिर अयोध्या है, श्रावस्ती है, और उसके बारे में थोड़ा सा मतभेद चलता है, और एक बिहार में, बिहार है वो भी उत्तर भारत में ही आता है। तो बहुत सारे तीर्थंकर वहां जन्म ले चुके हैं। वो गोरखपुर के पास भी एक स्थान है ना, कौन सा, कम नहीं, एक, एक काकंदीपुर वहीं पर है गोरखपुर के आसपास, और ये कंपिला जो है ना इस तरफ है, और हस्तिनापुर भी है। तीन तीन तीर्थंकरों की भूमि है, अयोध्या, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, शंभवनाथ भगवान की भूमि है। इन सब स्थानों में हमारे अभी कुछ वर्ष पहले विहार हुआ था, सन 2015 में, तो सबके दर्शन करते हुए निकले। कुछ बाकी भी रह गए, क्योंकि पद विहार में एक साथ सब कवर करना थोड़ा कठिन रहता है, तो 1200 किलोमीटर की यात्रा में जितने हो गए कवर उतने दर्शन कर लिए। फिर चतुर्मास का टाइम हो गया तो बड़त पहुंच गया, ऐसा था क्रम। तो ये आचार्यों की भूमि है कर्नाटक। वैसे तो पार्श्वनाथ भगवान के सर्वाधिक हैं, फिर आदिनाथ भगवान के भी बहुत मिलते हैं मंदिर, वो प्रथम है ना। इस पूरे अवसरपिणी काल में प्रथम जिन शासन के प्रवर्तक आदिनाथ भगवान हुए, तो जैनों ने उनका भी बहुमान रखा है, अच्छी बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तंत्वादयो निरपेक्षा अपि कश्चित् अर्थ मात्रां जनयन्ति। धागे अगर अलग अलग हो तो भी वो कुछ काम तो कर सकते हैं, जैसे नए अगर अलग अलग हो तो भी एकांतवाद को उत्पन्न तो कर सकते हैं, लेकिन साथ में होते हैं तो कपड़ा बनता है, अलग अलग धागे होते हैं तो कपड़े नहीं बनते हैं। भवति ही कश्चित् प्रत्येकं तंतुस् त्वक्त्राणि समर्थः। एकश्च बलवजो बंधने समर्थ इमे पुनर्नया निरपेक्षा संतो न कांचिदपि सम्यक दर्शन मात्रां प्रादुर्भावयन्ति इति। देखिए कितनी सुंदर बात कही कि एक धागे से कुछ काम तो हो सकता है और एक रस्सी से भी किसी को बांधा जा सकता है, लेकिन एक नए से सम्यक दर्शन कभी नहीं हो सकता। अद्भुत बात है। और ये आचार्य महाराज ने क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि उनके सामने कोई ग्रंथ ऐसे रहे होंगे या फिर कोई परिस्थिति ऐसी रही होंगी जिसमें उनको ये समझ में आ रहा था कि एक नए के आग्रह से लोग कैसे एकांतवादी बन जाते हैं, और एकांतवादी बन गए तो फिर सम्यक छूट जाता है। जब सब नयों का समावेश होता है और सबको यथावत जाना जाता है तब सम्यक के कारण होता है। नैष दोष अभेता नवबोधात। अच्छा, ये शंका की है तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ये दोष नहीं आएगा कि अभितम अभितम अर्थम अनवबुद्धि परेण इदम उपालभ्यते। वास्तविक अभिप्राय को न समझ करके कोई अन्य इस तरह से उलाहना देता है। एतद् उक्तम, ये कह चुके हैं कि निरपेक्षेषु तंत्वादिषु पटादि कार्यम नास्ति। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि धागों से कोई काम नहीं होता, हम ये नहीं कह रहे हैं, पर धागे अलग अलग करोगे तो कपड़ा नहीं बनेगा, ये कह रहे हैं हम। तो इतने में समझ लो आप कि अगर नयों को तुम अलग अलग करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, खत्म बात। अथ तंत्वादिषु पटादि कार्यम शक्ति अपेक्षा अस्ति इति उच्यते। लेकिन उस धागे में कपड़े बनाने की शक्ति तो पाई जाएगी, भले वो अकेला रहे। नैष्वपि निरपेक्षेषु बुद्धि विधान रूपेषु कारणवशात सम्यक दर्शन हेतुत्व परिणति सद्भावात शक्त्या आत्मना अस्तित्वम इति साम्यमेव उपन्यासस्य। उसी प्रकार उन नयों में भी शक्ति तो रहती है सम्यक तो उत्पन्न करने की, लेकिन साथ में हो जाएंगे तो उत्पन्न करेंगे और अकेले रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा है। ज्ञान दर्शन योस्तत्वं नयानां चैव लक्षणं ज्ञानस्य च प्रमाणत्व मध्यायेस्मिन् निरूपितम्। इस प्रथम अध्याय में इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संज्ञायां प्रथम अध्याय, इस प्रकार ये पहला अध्याय पूर्ण होता है। अंतिम काव्य में आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान और दर्शन का स्वरूप, नयों के लक्षण और ज्ञान का जो प्रमाणपना है वह इस प्रथम अध्याय में निरूपित किया गया, अर्थात इसका व्याख्यान यहां पर पहले अध्याय में संपन्न हुआ। तो 8 दिनों में यहां तक अपन स्वाध्याय में आ गए, पहला अध्याय पूरा हो गया। जय नमः जयतु शासनम।